5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए तैयार हुआ विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स में महामारी की शुरुआत से अब तक का सबसे घातक दिन। एक दिन में दर्ज हुई 16 मौतें और भारत में भी गहराया कोविड संकट। 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक। अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स सरकार का कहना है कि वो लोगों और अधिकारियों को सकारात्मक रैपिड एंटीजन परीक्षणों की रिपोर्ट करने के लिए एक नई प्रणाली पर काम कर रही है। इस बीच ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 30,062 नए स्थानीय मामले और 16 मौतें दर्ज की गई हैं। मौतों की संख्या महामारी की शुरुआत से एक दिन में आई सबसे अधिक मौतें हैं। आपको बता दें कि क्वींसलैंड और विक्टोरिया पहले से ही सकारात्मक रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं। दोनों राज्य अब आधिकारिक दैनिक मामलों की संख्या में उन आंकड़ों को शामिल कर रहे हैं जिससे रोगियों को औपचारिक सहायता और वित्तीय सहायता का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। साथ ही अब राज्यों में कोविड की सीमा की अधिक सटीक तस्वीर सामने आ रही है। इस विषय पर न्यू साउथ वेल्स की स्वास्थ्य प्रवक्ता डॉक्टर नेटाली क्लीस का कहना है,
Next week, public health orders will be updated to include a requirement that people report their positive rapid antigen test results. This will help ensure that positive cases are provided with support and advice about how they can manage their symptoms and when they might need to seek extra medical support.
New South Wales Labour Party के नेता क्रिस मिंस का कहना है कि कोविड के साथ रहने का मतलब ये नहीं कि आपको ये भी पता ना लगे कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। लेबर पार्टी के नेता ने सरकार की कोविड परीक्षण नीति की आलोचना की और इस बात पर चिंता व्यक्त की कि जो परिवार परीक्षण का खर्च वहन नहीं कर सकते उन्हें बिना परीक्षण रहना होगा।
Really do insist that rapid rats be used on a series of days to determine whether someone is infectious or not. You are talking about potentially more than $100 a week for a family of five to determine whether they've got COVID-19 or not. We do not want people not taking those tests and therefore not testing negative or positive for COVID-19. These need to be made available. It's a pressing public health emergency.
इसी के साथ परीक्षण किट के निर्देशों में अन्य भाषाओं को भी जोड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि 1.5 मिलियन से अधिक ऑस्ट्रेलियाई गैर अंग्रेजी भाषी पृष्ठभूमि से आते हैं। विक्टोरिया का कोविड संकट भी हर दिन के साथ गहराता जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 44,155 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 4 मरीजों की मौत भी हुई है। आपको बता दें कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से 22,051 मामलों की जानकारी सामने आई है और PCR परीक्षण के माध्यम से 22,104 मामले पता चले हैं। इस वक्त अस्पतालों में 752 लोग भर्ती हैं, जिनमें से 104 गहन देखभाल में हैं और 23 वेंटिलेटर पर। राज्य में बूस्टर शॉट्स तेजी से लगाए जा रहे हैं और शनिवार को 15,739 बूस्टर शॉट्स लगाए गए। सक्रिय मामलों की बात करें तो राज्य में इस वक्त 146,863 सक्रिय कोविड मामले हैं। टीकाकरण की अगर बात करें तो विक्टोरिया के लगभग 16% वयस्कों को टीके की 3 खुराक मिल चुकी हैं। 12 और उससे अधिक आयु वर्ग के 93% लोगों को टीके की 2 खुराक मिल चुकी हैं। 5 से 11 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए टीकाकरण शुरू होते ही विक्टोरिया सरकार ने घोषणा की है कि वो विकलांग या टीके से हिचकिचाने वाले बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करेगी। कार्यवाहक प्रीमियर जेसिंटा एलन का कहना है कि सिस्टम के खुलने के बाद से माता पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए 35,000 से अधिक बुकिंग की गई हैं और लगभग 40,000 स्पॉट्स अभी भी उपलब्ध हैं। कार्यवाहक प्रीमियर ने यह भी जानकारी दी कि विक्टोरिया उन 5 से 11 साल के बच्चों को खुराक देने के लिए सरकारी केंद्रों की संख्या को दोगुना करेगी और कुछ कमजोर समूहों के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध की जाएगी।
There are 15 sites across Victoria that have enhanced disability access. For our children with autism, there are 8 specialist sites around the state who are going to offer that support service for children and their families.
Victoria सरकार ने पिछले सप्ताह pathology clinic में COVID-19 परीक्षणों से संबंधित लोगों को अपने COVID लक्षणों की निगरानी करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि संसाधनों की कमी के चलते लगभग 7,000 लोगों के परीक्षण प्रभावित हुए थे। आपको बता दें कि संसाधनों की कमी के चलते लगभग 7,000 लोगों के परीक्षण प्रभावित हुए हैं। इस विषय पर विक्टोरिया के कोविड 19 रिस्पांस कमांडर जेरोइन विमर का कहना है.
Bearing in mind that our isolation guidelines are now that people need to isolate for 7 days when they turn a positive result, I would expect them to really check their own symptoms. I would urge them to get another rapid antigen test or a PCR test and then to use that to make the determinations about their next steps.
अब खबरें भारत से. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई सुरक्षा चूक के बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने स्पष्ट किया कि उस वक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था.
अरे मैं फिर कह रहा हूँ, पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा. और वो बिल्कुल सेफ थे, उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी, कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया. तो उसमें क्या है, मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई.
भारत में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना मामले बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर कोरोना प्रतिबंध सामने आ गए हैं. प्रतिबंधों का असर कई राज्यों के आने वाले चुनावों पर भी दिखने लगा है. ताज़ा बदलावों की जानकारी देते हुए भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने जानकारी दी.
So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th of January. Commission shall subsequently review the situation, considering the situation of the pandemic and issue further instructions accordingly.
उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करेगी.
लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं. 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए. हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें.
वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोग भाजपा सरकार को विदाई देने के लिए तैयार हैं.
निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है. 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है. इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतज़ार कर रही थी, किसान इंतज़ार कर रहा था, व्यापारी इंतज़ार कर रहा था, नौजवान इंतज़ार कर रहा था. 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा.
अब सुनते हैं डॉलर का हाल. आज यानी रविवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.35 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 72 सेंट्स थी. अब खबरें खेल जगत से. पाकिस्तान क्रिकेट की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और अब पाकिस्तान में खेले जाने वाली T20 लीग को एक और बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL 2022 का नया सीजन अब जल्दी ही शुरू होने वाला है, लेकिन साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को इस लीग में खेलने के लिए NOC देने से इनकार कर दिया है. आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका बोर्ड ने यह फैसला घरेलू टूर्नामेंटों को प्राथमिकता देने के लिए किया है. अब लेते हैं मौसम की जानकारी. बात करते हैं कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की. शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां दिन में मौसम साफ रहेगा. यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस. एडिलेड में कल दिन में आंशिक बादल रहेंगे. यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस. मेलबर्न में कल आंशिक बादल रहेंगे. यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद देश की राजधानी कैनबरा की, जहाँ आसमान में बादल आते जाते रहेंगे। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं सिडनी की, जहाँ कल बारिश की संभावना रहेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में कल आंशिक बादल रहेंगे। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में कल आसमान में आंशिक बादल रहेंगे। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। यहाँ का तापमान रहेगा अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको बता देते हैं, www.sbs.com.au/hindi।